शांति। दो दिन पहले बाप दादा ने हमें एक बहुत सुंदर होमवर्क दिया है, वो करने के लिए समय भी निश्चित करके दिया है, लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छा आश्वासन भी दिया, कोई बात नहीं बच्चे, हो जाएगा, आप हिम्मत रखो, बाप दादा मदद अवश्य देंगे। ये तो हम भी जानते हैं, हम कहते भी हैं, लेकिन किस तरह हिम्मत का कदम बढ़ाकर बाप की मदद के हम पात्र बने। हिम्मते बच्चे मददे बाप, आइए इसी विषय पर हम क्लास सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के उर्मिला बहन जी, हम सभी आपका स्वभा में बहुत 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 स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। आपने 1981 में बाबा का ज्ञान प्राप्त किया और 1985 से आपने अपने जीवन को ईश्वरी सेवा अर्थ समर्पित किया। अनेक अभियानों द्वारा आपने पूरे भारत भर में अपनी सेवाएं दी है। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत शिविर लगाने के अनेक अनुभव आपके पास है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपने संबोधन किया है और अनेकानेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी आपने वक्तव्य दिया है। आप न केवल एक कुशल वक्ता है परंतु एक बहुत अच्छी लेखिका भी है। हमने आपके लेख ज्ञानामृत एवं अन्य किताबों में अवश्य पढ़े होंगे। वर्तमान समय मासिक ज्ञानामृत पत्रिका एवं त्रैमासिक हरियाली पत्रिका की आप सह संपादिका है। तो आइए हम क्लास सुनेंगे। हिम्मते बच्चे मददे बाप, आदरणीय उर्मिला बहन जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को निर्विघ्न बनने का होमवर्क दिया और बाबा ने मदद करने का वायदा भी किया, लेकिन बाबा मदद उन बच्चों की करेंगे जो बच्चे हिम्मत करेंगे। लौकिक दुनिया में भी छोटेपन से स्कूल में हमने पढ़ा, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम हिम्मत शब्द को देखें तो इसका बहुत सुंदर अर्थ है। इसमें दो छोटे छोटे शब्द मिलकर के ये बना है, एक है हिम और दूसरा है मत। हिम माना बर्फ, बर्फ देखो कितनी सख्त होती है, और मत माना विचार। तो बर्फ की तरह से दृढ़ विचार, उसका नाम है हिम्मत। अडिग विचार, दृढ़ विचार, जिसको कहते हैं दृढ़ता की शक्ति। तो जब हमारे अंदर ये दृढ़ता की शक्ति आती है तो चारों तरफ से ऑटोमेटिक मदद मिलनी शुरू हो जाती है। प्रकृति भी मदद करेगी, परमात्मा भी मदद करेंगे, मनुष्य आत्माएं भी मदद करेगी। और अगर हमारे अपने ही विचार ढीले ढाले हैं, स्थिरता नहीं है, लक्ष्य निश्चित नहीं है, तो हम खुद भी अपने मददगार नहीं है, बाकी भी नहीं बनेंगे। लौकिक दुनिया में लौकिक गवर्नमेंट भी लोगों के सामने ये फार्मूला रखती है। वो कहती है तुम दो कदम चलो, यानी कि तुम इतना करो, 10% 90% मैं करूंगी। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की योजनाएं होती है। मुझे एक बात याद आ रही है, एक बार एक गांव में गवर्नमेंट का मैसेज आया कि भाई तुम एक हॉस्पिटल के लिए जमीन दे दो, हॉस्पिटल गवर्नमेंट बनाएगी। तो गांव की पंचायत विचार करने लगी। पंचायत के पास एक गांव के पूर्व में जमीन थी और एक पश्चिम में थी। तो जो पूर्व की जमीन थी उधर के लोगों ने कहा देखो हॉस्पिटल यहीं बनाना, पश्चिम की जो जमीन है वो हमसे आधा किलोमीटर दूर पड़ती है, हमसे चल के आधा किलोमीटर दूर नहीं जाया जा सकता। और जो पश्चिम तरफ के लोग थे उन्होंने पंचायत को कहा देखो जमीन पश्चिम की तरफ है यही वाली देना, पूर्व की जो जमीन है ना वो तो हमसे आधा घंटा दूरी पे हमसे नहीं जाया जाएगा। अब दोनों तरफ के लोगों में आपस में बहस और गवर्नमेंट और पंचायत कंफ्यूज हो गई। अब गवर्नमेंट ने जो समय दिया था 6 मंथ का वो पूरा हो गया, तो गवर्नमेंट ने बाजू वाले गांव को कहा जमीन दे दो, उन्होंने तो चुटकियों में जमीन दे दी। वो गांव कंपैरेटिवली छोटा था, वहां हॉस्पिटल बन गया। अब ये बड़े गांव वाले लोग 5 किलोमीटर चल के उस छोटे गांव के हॉस्पिटल में जाते और अपने गांव में ये आधा किलोमीटर नहीं चल सकते थे। तो इसको कहते हैं हिम्मत नहीं की। हिम्मत नहीं की तो मदद भी नहीं मिली। लेकिन हम बाबा के बच्चे ऐसे नहीं है, हम तो चुटकियों में डिसीजन लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसा है ना? ऐसा है ना? देखो सह बात खड़ा कर रहे हैं। इसलिए बाबा हर कदम में हम बच्चों की मदद करते हैं और उस मदद का तो परिणाम है कि हम कहाँ कहाँ से आकर के बाबा की गोदी में बैठे हैं। बाबा कहते हैं ये मधुबन बाबा की गोदी है। तो हिम्मत का कदम बढ़ाया तो भगवान ने गोदी में उठा लिया। बाबा की 2 बहुत सुंदर मुरलियां हिम्मत के ऊपर चली हुई हैं। एक मुरली है 22 जनवरी 1988 की और एक मुरली है 30 जनवरी 1988 की। तो उसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा की हिम्मत के कदमों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा ने पहला हिम्मत का कदम उठाया समर्पण मयता, समर्पित हो गए। बाबा ने कहा समर्पित भी कैसे समय में हुए, जब ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल ही नहीं था कि मैं किस मार्ग पे जा रहा हूँ और इस मार्ग का परिणाम क्या निकलेगा। एक नया मार्ग, एक नई चुनौती, नई तरह का ज्ञान, नई धारणाएं, सब कुछ नया, लेकिन फिर भी समर्पित हो गए बाबा। बाबा ने कहा तन मन धन और जन चारों समेत समर्पित हुए। लौकिक दुनिया में सन्यासी समर्पित होते हैं लेकिन उनका ना धन लगता और ना उनका जन लगता। तन मन तो लगाते हैं, धन को तो पीछे छोड़ जाते हैं। भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे, वैराग आया, जंगल में गए, लेकिन राजपाट तो पीछे ही छोड़ गए, पीछे वालों ने खाया, और बीबी भाई भतीजे सब पीछे छोड़ गए। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने चारों चीजें समर्पित की। तन बाबा की सेवा में लगाया, बाबा को दे दिया। इसके अलावा भी बाबा की आयु 60 साल की थी जब शिव बाबा आए, लेकिन फिर भी बाबा हरेक स्थूल कार्य में सबसे आगे होते थे। बाबा ने कहा इनको ये पक्का था कि जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके और करेंगे। और दूसरा बाबा कहते थे बच्चे जब भी शिव बाबा आएगा, अगले कल्प में भी आएगा, तो भी ये शरीर तो 60 साल का ही होगा, तो क्या मैं यज्ञ की इतनी प्यारी सेवा इसलिए ना करूं कि मेरी आयु बड़ी है, मेरा ये सब्जेक्ट तो छूट जाएगा, फिर मुझे पूरे नंबर कैसे मिलेंगे। इसलिए मेरे को भी कर्मणा सेवा के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने। इसलिए बाबा हर प्रकार की सेवा किया करते थे। तो तन का समर्पण, मन का समर्पण, इतना सब कुछ करने के बाद भी ना तो बाबा को अहंकार आया ना कोई दिखावा आया, लेकिन बाबा मन मना भव रहे, दिन हो रात हो, एक शिव बाबा की मीठी स्मृति में खोए हुए बाबा के चित्र हम देखते हैं, कभी पहाड़ी पे, कभी झूले पे, कभी कमरे में, कभी खटिया पे। तो कितना उनका बाबा के साथ अनन्य प्रेम था, और कोई भी बात आती थी तो उस बात को भी वो भगवान से प्यार बढ़ाने की बात के रूप में परिवर्तित कर देते थे। उनकी हर एक बात ईश्वर की तरफ हमारे मन को ले जाने वाली होती थी। तो उन्होंने मन भी लगाया, वाणी भी लगाई, बोल भी बाबा पे समर्पित कर दिए। समर्पण के बाद बाबा का कोई मन वचन कर्म लौकिक दुनिया में गया ही नहीं। और तीसरा, बाबा ने धन समर्पित किया। आपने देखा होगा दुनिया में लोग दान करते हैं या किसी संस्था को कुछ देते हैं तो बहुत करके ये कहते हैं भाई रुपए में से 10 पैसे निकालो। तो 10% का दान करने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने बाल बच्चों को वर्षा दे करके और कोई छोटा मोटा हिस्सा रख लिया और वो किसी धर्म के स्थान पे दे गए। जैसे बाबा मुरली में मिसाल देते हैं, कश्मीर का राजा मरा तो अपनी संपत्ति आर्य समाजियों को दे गया, मरने के बाद नाम करके गया, जीते जी नहीं। लेकिन बाबा ने तो 100% दिया। और कैसे समय में दिया, जब बाबा के अभी 2 बच्चे अनमैरिड थे, लेकिन बाबा ने एक बार भी नहीं सोचा कि कल क्या होगा, इतनी लंबी आयु पड़ी है, कहीं भूखो ना मरना पड़े, दे तो देता हूँ लेकिन पता नहीं बाल बच्चों का क्या होगा, इन्हें रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितने ख्याल आते हैं व्यक्ति को। लेकिन बाबा को तो कोई ख्याल नहीं आया। और एक धक से समर्पित होने के बाद बाबा ने दोबारा पैसे को हाथ नहीं लगाया, छुआ नहीं, अपने हाथ से पैसे को छुआ नहीं। कारोबार तो बाबा ने किया, करवाया, लेकिन कोई बच्चा देता भी था तो बाबा उसको हाथ नहीं लगाता था। हीरे जवाहरातों से खेलने वाले बाबा ने अपने हाथ ऐसे समेट लिए कि इस दुनियावी धन से हाथ मैले क्यों किए जाए, ना मन मैला किया ना हाथ मैले की। तो ये बाबा ने धन समर्पित किया और संबंधों का भी पूरा समर्पण कर दिया। साथ में रहे, ना पीठ दिखाई ना भागे, उनके बीच में रहे। बाबा के बच्चे भी बाबा के साथ थे, सारे संबंधी, मेजोरिटी जो नजदीकी संबंधी थे, जैसे भाऊ थे वो भी बाबा के संबंधी थे, आनंद किशोर दादा वो भी बाबा के संबंधी थे, और भी यज्ञ में बहुत सारी बहनें, माताएं और बाबा के अपने परिवार के लोग, उनके बीच में रहते बाबा ने कितना अच्छा पुरुषार्थ किया। जीवन कहानी में एक छोटी सी घटना का जिक्र आता है कि एक बार बाबा ध्यान में बैठे थे तो बाबा ने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा कि आसमान से पुष्पक विमान आया और बाबा उसमें बैठ करके ऊपर जाने लगे। तो बाबा को एकदम ख्याल आया कि जसोदा कहाँ है, और वो विमान थोड़ा ऊपर जाकर के फिर नीचे जमीन में आ गया। तो बाबा को लगा कि ये मैंने गलत संकल्प किया, मैंने क्यों याद किया, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो ऐसी मान्यता है ना कि जो भी यज्ञ कर्म किया जाए तो वो पत्नी के साथ किया जाए। जैसे रामायण में दिखाते हैं कि राम ने यज्ञ किया तो सीता का आह्वान किया, सीता नहीं थी तो सोने की सीता बना करके पास रखा। तो जो सनातनी संस्कृति है वो ये मानती है कि गृहस्थ जीवन में धर्म के कार्य में दोनों के हाथ लगने चाहिए। अब बाबा तो सनातनी थे और बाबा ने तो जीवन भर कथाएं सुनी थी, धार्मिक कार्य किए थे, जसोदा के साथ संपन्न किए थे, लेकिन उस दिन बाबा को जब ऐसा एहसास हुआ तो बाबा को लगा कि नहीं, भक्ति मार्ग वाला पाठ पूरा हो गया और ये ज्ञान मार्ग का पाठ ऐसा है जिसमें किसी को भी याद नहीं करना, आए अकेले जाना अकेले। तो ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग में तो धारणाएं दूसरी थी, ज्ञान मार्ग की धारणा ये है कि आत्मा अकेली, शरीर भी साथ में नहीं, नितांत अकेली जाएगी। तो उसके बाद बाबा ने ये पाठ पक्का किया। बाबा की युगल ने शरीर छोड़ा, तब भी बाबा से पूछा गया, बॉम्बे में शरीर छोड़ा था, बाबा से पूछा गया कि क्या शरीर को यहाँ पर लेकर के आए। बाबा ने कहा नहीं, हमारा नाता तो आत्मा के साथ था, अब शरीर से हमारा क्या नाता है, इसलिए बॉम्बे में ही उसका अंतिम संस्कार हो गया। बाबा के बच्चे बाबा के साथ थे, 400 भाई बहनों में, लेकिन किसी को पता नहीं पड़ता था बाबा ने कोई मोह ममता दिखाई हो, अपनापन दिखाया हो। आज की दुनिया में तो आप देख रही हैं कैसे भाई भतीजावाद चलता है, केवल लौकिक में नहीं, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन धर्म में भी। आमतौर पे पिता की गद्दी पर उसका पुत्र ही बैठता है, धर्म के मार्ग में भी। लेकिन बाबा कितने न्यूट्रल रहे, बाबा ने जो समर्पण किया और जो ओम मंडली के नाम से ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में जो 8 माताएं थी, उनमें 4 माताएं थी, 4 कुमारियां थी, उनमें बाबा के परिवार के एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है। ट्रस्ट के 8 लोग परिवार से अलग गए, ना तो बहू का नाम है, ना बेटी का नाम है, और ना ही युगल का, हालांकि ये सब ज्ञान में चलने वाले थे। तो इतना बाबा देह के संबंधों से न्यारे रहे। तो बाबा ने कहा कि ये बाबा ने हिम्मत का एक कदम उठाया, तो परिणाम क्या निकला, उस हिम्मत के एक कदम का परिणाम बाबा का तो बहुत सहयोग मिला ही, लेकिन बाबा के हिम्मत के एक कदम को देख करके बाबा के पीछे लाइन लग गई, कितने लोग बाबा के पीछे आए। फिर बाबा ने दूसरा हिम्मत का कदम सुनाया, वो है सहनशीलता। बाबा ने कहा देखो, बाबा समर्पण हुआ तो कोई लोगों ने उसकी महिमा नहीं की कि दादा लखीराज ने इतना त्याग किया या इतना समर्पण किया या भगवान से इतना प्रेम किया, लेकिन लोगों ने तो उनकी परीक्षा ली, और एक तरफ तो समर्पण हुए और दूसरी तरफ बहुत कुछ सहन भी करना पड़ा। सब कुछ देने के बाद भी बहुत कुछ सहन भी करना पड़ा, और उसमें भी बाबा ने कहा मुख्य रूप से 3 तरह के पेपर आए। 2 मिनट बाबा
आया।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा मुख्य रूप से तीन प्रकार के पेपर आए। एक पेपर तो दुनिया के लोगों ने जो विरोध किया, दूसरा यज्ञ की स्थापना करने में भी विघ्न आए, और तीसरा बाबा ने कहा जो अपने बच्चे थे, ब्राह्मण बच्चे थे, उनकी तरफ से भी बहुत पेपर आए। कई असंतुष्ट हुए, कई ट्रेटर बने, और बाबा ने अपनी सहनशीलता के बल से ये तीनों पेपर पार किए। हमारे पास एक अनुभव आया था, दयाराम छुगानी नाम से एक सिंधी भाई का अनुभव आया था। जब बाबा सिंध में थे तो उसकी आयु बहुत छोटी थी, छोटी माना 16-17 साल का था, और वो एनटीओ मंडली का एक सदस्य था, बहुत एक्टिव सदस्य था। तो जब एनटीओ मंडली ने पिकेटिंग की थी, आप सबने जीवन कहानी सुनी है, तो उसमें वो भी शामिल था। एक उर्दू अखबार था फखर फार, उसमें वो लिखने का काम करता था। तो उस अखबार में बाबा के विरुद्ध बहुत उसने लेख लिखे, पिकेटिंग में भी शामिल हुआ। जब लखी भवन को आग लगाई उस समय भी वो उपद्रवियों में शामिल था। बाबा के घर में पत्थर फेंक करके खिड़की दरवाजे तोड़ने में भी वो था। और भी उसने बाबा के विरुद्ध बहुत सारे ऐसे कर्म किए। फिर ओम मंडली सिंध हैदराबाद से कराची में शिफ्ट हो गई। कराची में बाद में तो काफी शांति हो गई थी, और उस शांति में भाई बहनों ने बहुत तपस्या की। तपस्या के बाद 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे लोग भारत आ गए, उनमें वो भी आ गया और बड़ौदा में सेटल हो गया। 1950 में बाबा का यज्ञ भी भारत में आया, और उसके कुछ समय के बाद बड़ौदा में हमारी शाखा खुली। तो वो व्यक्ति भी बड़ौदा की शाखा में जाने लगा। तब तक तो उसकी एज काफी हो गई थी, दुनिया के काफी अनुभव हो चुके थे। तो जब वो बड़ौदा की शाखा में जाने लगा तो उसको निश्चय हो गया कि ये कार्य तो भगवान का है, और ये ब्रह्मा बाबा तो केवल निमित्त थे। तो उसे अपनी पुरानी पूरी कहानी याद आई कि मैं जब सिंध में था तो मैंने बाबा के साथ कैसा व्यवहार किया, बाबा के लिए मैंने क्या क्या किया, क्या क्या बोला। कई ऐसे लोग थे जिनको वो जासूस बना करके और बाबा जहाँ रहते थे वहाँ भेजते थे कि जाओ देख करके आओ वहाँ पे क्या होता है। तो वो जाने वाला आके बताता था कि वहाँ तो ध्यान में बहने रास करती हैं, जैसे राधा कृष्ण, बाकी तो मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज में वो शामिल रहा था। तो जब उसको निश्चय हो गया तो अब हम समझ सकते हैं कितना पश्चाताप हुआ होगा उसको। उसको एक एक बात याद आती थी और वो खून के आंसू रोता था। उसके बाद वो माउंट आबू आया, तब बाबा साकार में थे, तो बड़ा डरता डरता आया कि बाबा मुझे पहचान लेंगे और मैं बाबा के सामने कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो बाबा के विरुद्ध बहुत ऐसे कर्म किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही बड़ौदा की पार्टी के साथ वो ऊपर पांडव भवन में आया, बाबा के सामने गया, तो बाबा ने उसे गोद में ले लिया और बहुत प्यार किया, जैसे बाबा बच्चों को प्यार करते थे। तो उसकी वो संकोच की भावना तो निकल गई, लेकिन उसने लिख करके भेजा था कि मेरे मन में इतनी आत्मग्लानी हुई कि मैं अपनी दोनों बाजू काट करके फेंक दूं। ये वही बाजू हैं जिन्होंने बाबा के घर पर पत्थर फेंके थे और जिन्होंने बाबा के विरुद्ध अखबारों में लिखा था। अगर बाबा मुझे एक बार भी डांट देते तो मेरे मन को तसल्ली मिल जाती, लेकिन बाबा ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं और इतना प्यार दिया, तो मुझे इतना पश्चाताप अंदर होता है, पश्चाताप कि मैं अग्नि में जलता हूं। तो देखिए, बाबा ने जो विरोध करने वाले थे, ग्लानी करने वाले थे, विघन डालने वाले थे, उनको भी कैसे पिघला दिया। भक्ति मार्ग में, रामायण में, क्योंकि रामायण तो संगम युग के कर्तव्यों की ही यादगार है, उसमें एक छोटा सा प्रसंग आता है कि जब श्री राम और भरत का चित्रकूट में मिलन हुआ, उस समय ये चारों माताएं भी भरत के साथ गई थी। तो सीता केकई के पांव दबा रही थी, तो केकई ने सीता को कहा कि बेटा, तुम श्री राम को कहो कि वो मुझे माफ कर दें। तो सीता ने कहा, माताजी, माफ तो तब किया जाता है जब किसी को दोषी समझा जाए, वो तो आपको दोषी मानते ही नहीं है। तब केकई ने कहा, यही तो सबसे बड़ी पश्चाताप की अग्नि है कि राम मुझे दोषी नहीं मानता। अगर एक बार भी वो मुझे दोषी मान लेता तो मेरी पश्चाताप की अग्नि ठंडी हो जाती, लेकिन वो तो मुझे दोषी मानता ही नहीं, इसलिए मैं भीतर ही भीतर अग्नि में जल रही हूं। तो बाबा की सबसे बड़ी सहनशीलता ये रही कि उन्होंने विरोध करने वाले, रुकावट डालने वाले, इन सब को प्यार दिया, माफ किया, फिर भी गले लगाया। और इसलिए बाबा ने कहा, लोगों ने यही शब्द कहा कि बाबा तो बाबा ही है, ये शब्द बाबा के लिए विरोधियों के मुख से भी निकले। तो बाबा ने कहा, ये सहनशीलता एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला देती है। कैसी भी विरोधी आत्मा हो, उसको भी अपना बना देती है। बाबा ने कहा, जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का मिसाल है कि वो इतने बड़े पहाड़ को हथेली पे रख के ले आया, ये इस बात की यादगार है कि पहाड़ जितनी बात को भी इतनी छोटी बात बना दिया और इतनी छोटी बात बना करके उसको खत्म कर दिया। तो ये हनुमान जी बाबा के कर्तव्य की यादगार है, जिसने इतनी बड़ी बड़ी बातें आई लेकिन उनको भी चुटकी में खत्म कर दिया, बातों को खेलने के और मनोरंजन के खिलौने समझ करके पार किया। तो बाबा ने कहा, ये हिम्मत का कदम। फिर बाबा ने कहा, देखो, निश्चिंतता बाबा की बेगरी पार्ट आया और इतने बच्चे खाने वाले, किसी के घर में एक दो बच्चे हो और साल भर का हो, आगे का ना हो, तो भी उसकी नींद उड़ जाती है। दुनिया में तो लोग कई कई पीढ़ियों का प्रबंध करने में बिजी रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा देखो इतने बच्चे खाने वाले और भंडारी में 25 पैसे भी नहीं, फिर भी हिम्मत बाबा की निश्चिंत रहा, क्या होगा कैसे होगा कब होगा। बाबा ने कहा ऐसे व्यर्थ संकल्पों की लाइन नहीं लगाई, लेकिन बाबा बैठे हैं, बाबा जिम्मेवार हैं, मैं तो केवल निमित्त हूँ। इस हिम्मत के संकल्प ने मदद भी करवा दी, मनी ऑर्डर भी आ गया, दाल चावल आटा भी आ गया और बच्चों का पेट भी भर गया। लेकिन ये मदद ऊपर वाले ने कब की, जब पहले हिम्मत का कदम उठाया। अगर हिम्मत नहीं होती तो बाबा मदद भी नहीं करते। तो बाबा ने कहा ये है हिम्मत। विपरीत परिस्थिति आते ही कई बच्चे हिम्मत ही छोड़ देते हैं, गलत सोचने लगते हैं, व्यर्थ संकल्पों में उलझ जाते हैं, संशय में आ जाते हैं, निश्चय डगमगा जाता है, क्यों क्या कैसे के प्रश्न पैदा हो जाते हैं, किसी के साथ भाव स्वभाव टकरा जाता है। तो बाबा ने कहा हिम्मत छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा को फॉलो करो। बाबा ने उस मुरली में कहा है हिम्मतवान बनना है तो बाबा को फॉलो करो, बाबा को देखो, बाबा ने कैसी ऐसी परिस्थितियों में हिम्मत की, ना हिले और ना हिलने दिया। बाबा का चेहरा देख करके बच्चे हिम्मत में आ जाते थे। हमारी मनोहर दादी सुनाती थी कि बेगरी पार्ट में हमारे शरीर तो जरूर थोड़े पतले हो गए थे, लेकिन हमारा मन बहुत स्ट्रांग हो गया, क्योंकि सारा दिन परम धाम में रहते थे। तो बेगरी पार्ट भी जिन्होंने निश्चय से उसको पूरा किया उनके लिए वरदान बन गया, क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली बन गया और उस शक्तिशाली मन से उन्होंने फिर कितनी सेवाएं की। तो बाबा ने कहा जब कोई भी पेपर आता है, परिस्थिति आती है, परीक्षा आती है, तो आपके मन को मजबूत बनाने आती है। और आप बच्चे अगर हिल जाते हो तो दोनों बातें चली जाती हैं, ना तो आपका मन मजबूत बनता और ना बाबा की मदद मिलती। इसलिए ये पाठ पक्का करना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमको सहनशील बनना है। बाबा ने कहा अपनी स्थिति को उपराम रखो, अपने मन को परम धाम में रखो, ऊंचे से ऊंचे बाबा के पास मन को रखो और सेवा कार्य करते हुए निमित्त भाव को रखो, यही सहनशीलता है। कई बार किसी के मन में ये भी सवाल आता है कि कितना सहन करें और कब तक सहन करें। कलयुगी जीवन, क्योंकि ऐसे तो हम संगम युग में हैं, संगम युग में भी बहुत प्रकार के पेपर सामने आते हैं, और अगर कलयुगी जीवन को देखें तो वो तो भरा ही पेपरों से है, चाहे व्यक्ति चाहे प्रकृति, हर चीज पेपर लेने के लिए तुली हुई है। इस कलयुगी संसार में जन्म लेना, बड़ा होना, ये सब सहनशीलता से ही संभव है, कदम कदम पर सहन करना पड़ता है। आप देखिए अभी कितनी ठंड पड़ी, नॉर्मल ठंड से कई गुना ज्यादा ठंड पड़ी। अमेरिका का हमने समाचार सुना कि -60 तक वहां का टेम्परेचर चला गया, बताइए कितने लोगों ने शरीर छोड़ा। भारत में भी जहां 0 तक जाता था वहां -6, -7 तक भी गया, सब जगह ठंड बहुत ज्यादा पड़ी। मान लीजिए हम सोए हुए हों और कोई पंखा चला दे, हमारी आंख उखड़ जाए तो हम क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे ना कि भी तुमने पंखा चला के मेरी नींद उखाड़ दी, मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी, अरे मेरे को ठंडी लग गई, मैं बीमार हो गया। अब प्रकृति ने इतने पंखे कूलर एसी चलाए, प्रकृति से कौन झगड़ा करेगा। प्रकृति के ऊपर कौन मुकदमा करेगा कि तेरे कारण खांसी हो गई, जुकाम हो गया, ठंड लग गई, नींद नहीं आई, घुटनों में दर्द हो गया, और कोई तो चले भी गए, कर सकता है कोई? सहम करना ही पड़ता है प्रकृति को, चाहे राजी चाहे नाराजी। तो ये जीवन सहनशीलता के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। गर्मी में हम गर्मी को सहन करते हैं, गर्मी में अगर कोई एसी कूलर पंखा बंद कर दे तो हम कहते हैं तूने बंद क्यों किया, और लाइट चली जाए तो फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी वालों पे करेंगे मुकदमा कि तुम्हारे कारण लाइट गई और मेरी नींद उखड़ गई? नहीं ना, सहन करना ही पड़ेगा ना। इसलिए सहन करना तो जीवन के साथ साथ है, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मान लीजिए हम भीड़ में हैं और किसी व्यक्ति का हाथ लग गया, बाल खींच गए, पांव पे पांव रखा गया, तो भी कई बार मन डिस्टर्ब हो जाता है, अरे तुम ध्यान से खड़े रहो, तुमने मुझे धक्का क्यों लगाया, तुमने मुझे पांव पे पांव क्यों रखा। लेकिन अगर कोई मच्छर मक्खी मच्छर काट जाए फिर क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे उसके साथ? सहन करते हैं कि नहीं करते हैं? मच्छर काट गया, मलेरिया या कोई और जीवाणु शरीर में आ गया, या मच्छर के कारण घाव हो गया, कहाँ ढूंढेंगे मच्छर को? आदमी से तो झगड़ा कर लेते हैं कि तुम ध्यान से क्यों नहीं बैठे, ध्यान से क्यों नहीं खड़े हुए, तुम्हारे कारण मुझे ये तकलीफ हुई। मच्छर को तो सहन करेंगे ना, छोटे से मच्छर को जिसमें कोई गुण नहीं, लेकिन उसने आपको हरा दिया। तो ये जो जीवन है हमारा, इस जीवन में कदम कदम पे सहन करना ही पड़ेगा। जानवर को सहन करेंगे, आप सड़क पे जा रही हैं और जानवर ने अपनी पूंछ लहरा दी, आपके कपड़े के ऊपर प्रिंट आ गया, आप क्या करेंगे? चुपचाप घर में जाके धो लेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आंधी आई, तूफान आया, आज ही आपने सफाई की और कोई चप्पल लेके आ जाए तो कहते हैं भाई तुमने मेरे साफ घर में चप्पल लाके मेरा फर्श खराब कर दिया। और अभी अभी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सारी खिड़की सारे कांच सब कुछ मिट्टी से भर जाए, फिर क्या करेंगे? इसलिए ना चाहते भी हम बहुत कुछ सहन करते हैं, और सहन किए बिना आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए सहनशीलता जीवन के साथ साथ है। और जब संगमयुगी जीवन है तो इसमें भी बहुत वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी भाव स्वभाव है। वैसे तो मनुष्य को वैरायटी पसंद है ना। मान लीजिए आप कुर्सी की दुकान पे जाएं, कपड़े की दुकान पे जाएं, चप्पल की दुकान पे जाएं, बाजार में जाएं, तो दुकानदार को आप क्या कहते हैं? अरे भाई तुम्हारे पास बस ये एक ही तरह की कुर्सी है, अरे दूसरी तीसरी जितने भी डिजाइन है सारे दिखा दो, हमको जो पसंद आएगा वो ले लेंगे। उसने 20 तरह की कुर्सी दिखाई, आप कहते हो नहीं भाई तुम्हारे पास तो डिजाइन ही नहीं है, हम फलानी दुकान पे गए थे उसने 50 तरह की दिखाई थी। तो 50 तरह की देखने में आनंद आता है। अब कुर्सियां तो 50 तरह की देखने में आनंद आता, और मनुष्य अगर वो 50 तरह के हैं तो जी दुखी क्यों होता है? मनुष्य एक तरह के हो और चीजें अलग अलग तरह की हो, ये कैसे होगा? इस भिन्नता भरी दुनिया में मनुष्य भी अलग अलग भाव स्वभाव के मिलेंगे। कोई सहयोग देगा, कोई रास्ते में रुकावट डालेगा, कोई महिमा करेगा, कोई ग्लानी करेगा, कोई हमारे गुण देखेगा, कोई अवगुण देखेगा। अच्छा है ना? तो वैरायटी देखने में तो आनंद आता है। अगर सारे एक जैसे हों, एक ही सांचे में ढले हुए हों, तो इतनी लंबी जिंदगी पार कैसी होगी? एक एक जैसी चीज को देखते देखते तो बोर ही हो जाएंगे। घर के सारे ही लोग एक जैसे हैं, एक जैसा ही बोलते हैं, एक जैसा ही खाते हैं, एक जैसा ही पहनते हैं, तो क्या लगेगा स्टैचू के बीच में आ गए, पता नहीं ये जिंदा भी है कि नहीं है, कि पता नहीं ये मिट्टी की बनी मूर्ति रखी हुई है, सारे ही एक जैसे लगेगा ना ऐसे। लेकिन ये वैरायटी है, क्योंकि ड्रामा में वैरायटी होती है तो मनोरंजन होता है। इसलिए अलग अलग भाव स्वभाव, अलग अलग विचार, ये सब कुछ देखें, इंजॉय करें। बाबा कहते हैं भिन्नता में एकता को देखो। एकता क्या है? एक तो एकता ये है कि सब आत्माएं हैं, दूसरा ये है कि सभी ज्योति बिंदु हैं, तीसरा ये है कि सभी प्रकाश स्वरूप हैं, चौथा ये है कि सबके मूल गुण एक जैसे हैं, पांचवी एकता ये है कि सभी एक ही पिता के बच्चे और एक ही घर से आए। तो एकता तो बहुत सारी है, एकता को देखना चाहे तो वो भी है, और भिन्नता को देखना चाहे तो वो भी है। देखो अपन यहाँ कितने बैठे हैं, एक की नाक दूसरे से नहीं मिलती, मिलती है क्या? एक की आंख दूसरे से नहीं मिलती, एक के हाथ के निशान दूसरे से नहीं मिलते, तो भिन्नता भी इतनी जबरदस्त, और एकता देखो तो वो भी इतनी जबरदस्त। तो बाबा कहते हैं दोनों बातों का आनंद उठाओ, क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठाओ। दूसरी बात है, कई लोग ये कहते हैं कि कब तक और कितना सहन करूं, इसके लिए भी बाबा ने बहुत अच्छी बात हमें बताई है। एक गरीब आदमी के सामने खर्चे की बात आए ना, सुबह भी एक खर्चा आ गया, कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, 1000 रुपए का बिल आ गया, दोपहर में किसी के यहाँ किसी फंक्शन में जाना है, उसके लिए सौगातें खरीदी, 1000 का बिल वो बन गया, शाम को अब अगर कोई खर्चा आ गया तो गरीब आदमी क्या कहेगा, कितना खर्चा करो, एक सुबह 1000 खर्च, दोपहर फिर 1000 खर्च, अभी मेरे पास नहीं है, सारे खर्चे आज ही आने हैं क्या? और इसकी जगह अगर कोई अमीर आदमी हो तो सुबह 1 लाख का खर्चा हुआ चुपचाप कर दिया, दोपहर 1 लाख का खर्चा हुआ चुपचाप कर दिया, शाम को फिर 2 लाख का आ गया तो भी चुप रहा, कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि उसकी पॉकेट भरी हुई है, उसके पास पैसे का स्टॉक है, और जो गरीब आदमी है उसके पास पैसे का स्टॉक नहीं है, इसलिए उसे थोड़ा सा खर्चा भी भारी लग रहा है। तो सहनशीलता में भी ऐसे ही है, जिसके पास सहनशीलता का स्टॉक है उसको तो बड़ी बड़ी बातें भी कुछ नहीं लगती, वो तो ऐसे पार कर जाएगा जैसे सामने कुछ आया ही नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ऊपर से उड़ जाओ, हवाई जहाज पहाड़ के ऊपर से उड़ जाता है तो उसको पता ही नहीं लगता कि मैंने क्रॉस करने में कोई मेहनत की, तो वो स्टॉक है इसलिए वो ऊपर से पार कर जाता है, उसको लगता ही नहीं कि मैंने कोई मेहनत की। जिसके पास स्टॉक नहीं है वो संघर्ष करता है, पहाड़ से टक्कर खाता है, पहाड़ कहाँ ही लेगा, उसको लगता है कि भाई मुझे तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत टक्कर खानी पड़ती है, मैं क्या करूं, मेरे को तो बहुत करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा ये सवाल मत उठाओ कि कब तक सहन करूं, कितना सहन करूं, लेकिन ये पाठ पक्का करो कि जैसे जीवन के लिए श्वास अनिवार्य है, जीवन के लिए भोजन अनिवार्य है, इसी तरह बातें आएंगी और उन बातों को क्रॉस करना भी अनिवार्य है। हम ये नहीं सकते कब तक बातें आएंगी, ये नहीं कह सकते, जब तक जीना है तब तक बातें भी आएंगी, विरोध भी होगा, परिस्थितियां भी हैं, क्योंकि किस दुनिया में रह रहे हैं। और बाबा हमारे सामने एग्जांपल, अंत समय तक भी बाबा ने सब प्रकार की बातें फेस की, पहले हंगामे उस तरफ थे, फिर इंडिया में आए सेंटर खुले तो यहाँ भी बहुत हंगामे हुए, और बहुत बच्चे थे जिन्होंने बाबा से इतनी पालना ली और पालना लेकर के भी वो चले गए, तो देखो लास्ट तक भी पेपर आते रहे और बाबा पेपरों के बीच में भी हर्षित रहे, बच्चों का उमंग उत्साह एक सेकंड भी कम नहीं होने दिया। तो बाबा कहते हैं अपने सामने इतना समर्थ एग्जाम्पल है आपके सामने, इतना दृढ़ एग्जाम्पल है अडोल, तो उनको देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसलिए हिम्मत का हम सबको भी कदम उठाना है, उठाया भी है और आगे भी उठाते रहना है, क्योंकि हिम्मत कदम कदम पर चाहिए और मदद भी कदम कदम पर चाहिए। इस ईश्वरीय जीवन में हिम्मत और मदद दोनों की बार बार पल पल आवश्यकता है। तो हिम्मत का अर्थ है विपरीत परिस्थिति में भी अचल अडोल रहना, और जब हम हिम्मत का ये कदम उठाएंगे तो बाबा हमें मदद करेंगे। कई बार इस तरह के समाचार सुनने को मिलते हैं कि किसी बाबा के बच्चे के साथ ऐसी ट्रेजडी हो गई कि उसका यंग बच्चा अचानक चला गया। हमारे पास एक अनुभव आया था, एक युगल ने अपने मकान की छत आश्रम को दी और छत पे आश्रम बन गया। वो शहर ऐसा है जिसमें छत ही करोड़ों रुपए की होती है, लेकिन उसका यंग बेटा जिसकी शादी होने वाली थी अपने कार्ड बांट रहा था। थोड़ी गर्मी का समय था तो पता नहीं गर्मी लगी या क्या हुआ, कुछ घरों में तो कार्ड बांट के आया, कुछ में बांटना बाकी था। बीच में एक बार घर में आया थोड़ा फ्रेश होने, सोफे पे आके बैठा और बैठा बैठा चला गया। तो जो रिश्तेदार आए थे या जो आसपास के लोग थे, उन्होंने उनके माँ बाप को कहना शुरू कर दिया कि अरे तुमने तो भगवान को छत दी, करोड़ों की संपत्ति दी, और फिर भी भगवान ने इतनी मदद भी नहीं की। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा देखो भगवान की मदद का अर्थ क्या है। दुनिया में भी भगवान को लोग कहते हैं कृपा करो, कृपा, तो कृपा का अर्थ क्या है, कर और पा, बिना किए तो आपको मिल नहीं सकता। तो भगवान ने हमने किया तो हम पर क्या मदद की। यंग बेटा चला गया लेकिन हमारी आंख में एक आंसू भी नहीं आया, और जिस दिन गया उस दिन से हमने क्लास भी नहीं छोड़ा, रेगुलर क्लास किया। ये हिम्मत किसने दी, नहीं तो जाने वाला तो जाता ही है, पीछे वाले भी ना बेचारे जिंदा रहते हैं और ना बेचारे जा सकते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन बाबा ने इतनी हिम्मत दी, इतनी मदद की। और तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि देखो वो लड़की हमारे घर आई नहीं थी, आ जाती तो हमारे लिए भी और उसके लिए भी डिफिकल्ट होता, अभी तो वो अपने पेरेंट्स के पास ही थी। तो ये भी भगवान ने बहुत मदद की, जो उस बच्ची को एक सहयोग दिया। इसलिए ये है भगवान की मदद, इसको कहते हैं मदद। कैसी भी परिस्थिति आई लेकिन मन नहीं हिला, अचल अडोल रहे, तो इससे बड़ी मदद भला और क्या होगी। तो मदद का स्वरूप भी हमको समझना है। भगवान मनोबल देते हैं और मनोबल ही सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसके आधार पे हम बड़ी बड़ी बातों को भी सहजता से क्रॉस कर लेते हैं बिना संघर्ष के। ओम शांति।
दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राह में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से